आप ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी ने इस सतमार्ग को बड़ा कठिन क्यों कहा है? ये तो बात बड़ी स्पष्ट है। हम सब जानते हैं, एक इच्छा जिसको पकड़ी रहती है, उस एक इच्छा को छोड़ना कई बार आदमी के लिए पूरी ज़िंदगी भी संभव नहीं हो पाता, एक इच्छा को छोड़ने के बाद। और जब अस्थि छुड़ाओ तो वो घर छोड़ के भागने को भी तैयार रहता है, सुसाइड करने को भी तैयार रहता है। तो विचार करके देख लो, जब मात्र एक इच्छा के लिए मनुष्य इतना अपने आप को, एक इच्छा के कारण अपने आप को इतना मजबूर देखता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता वो, तो जिसने 100% सारी ही इच्छाएं ख़त्म करनी हो तो ये सरल हो जाएगा या अति कठिन हो जाएगा? आदमी ने वासना रहित होना है। और वासना से ऊपर कर्तापन है, व्यक्तित्व का भाव है कि मैं हूं। क्योंकि वासना कर्तापन से पैदा हो रही है, इसको मूल अहम या अहम भाव कहते हैं। मैं अर्थात मेरी एग्जिस्टेंस इस प्रकृति में अलग है, ईश्वर से अलग मैं एक इंडिपेंडेंट सत्ता हूं, ये मेरे अंदर भाव नेचुरल वे में बना रहता है। तो इस व्यक्तित्व को ही आपने खत्म करना है। वासना का नंबर तो बाद में आता है, कर्तापन से वासना, वासना से संसार। तो मूल कर्तापन जो है उससे आपके अंदर त्रिगुणी वासना पैदा हो रही है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और ये जो वासना है फिर इच्छाओं के रूप में आगे एक्सपेंड हो रही है, या इच्छाओं के रूप में हमको ये दिखाई पड़ रही है। इसीलिए प्रैक्टिकल सत्य हमारे बारे में ये है कि हम पहले तो यही नहीं समझ पाते कि मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं वो पांच विकार के अंतर्गत आती हैं। सारी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोई कहेगा मेरे अंदर तो देशभक्ति की इच्छा है, क्या बुरी इच्छा है? लेकिन आपको पता नहीं, ये मोह से प्रेरित इच्छा है। जैसे आपको अपने शरीर के प्रति मोह होता है, अपने मकान के प्रति मोह होता है, अपने परिवार के प्रति मोह होता है, तो इसी मकान और परिवार का विकसित रूप देश है। इसलिए महाजी ने समतावलास में लिखा, देश भक्ति भी देह परायणता है। तो आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन है वो सांसारिक मार्गदर्शन से मेल नहीं खाता। दूर दूर तक संसार से ये अध्यात्म मेल नहीं खाता। एक चीज में तो मेल खाता है कि संसारी कहते हैं आदमी को सदाचारी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, भला इंसान होना चाहिए। अध्यात्मी कहता है आदमी को सदाचारी होना चाहिए, भला इंसान होना चाहिए। लेकिन यदि परिभाषा देखोगे तो जस्ट अपोजिट मिलेंगे। भला इंसान क्यों होना चाहिए समाज में? ताकि उसके द्वारा सबको लाभ पहुंचे, कोई कष्ट ना पहुंचे, इसी का नाम है भला इंसान। लेकिन अध्यात्म में महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त उसकी हर सोच और हर कर्म दुराचार की बुनियाद है। ईश्वर को छोड़कर उसकी हर सोच और कर्म दुराचार की बुनियाद है। क्यों दुराचार की बुनियाद है? क्योंकि वो पांच विकार से प्रेरित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस इंसान को तो होश ही नहीं आता, ये कंपेयर करता है दूसरों से, वो तो कितना बुरा इंसान है, मैं कितना अच्छा हूँ, सारे मोहल्ले में देख लो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, सब मेरी तारीफ करते हैं। तो अब बताइए कि इस सामाजिक इंसान को अध्यात्म कैसे समझाया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु श्रद्धा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तेरे अंदर गुरु श्रद्धा नहीं है इन चीज़ों को तू गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। ईश्वर तो तूने नाम मात्र के लिए सुन रखा है, ईश्वर है, तेरे अंदर कोई निश्चय थोड़ा है ईश्वर का। लेकिन पूर्ण गुरु पर जब श्रद्धा आती है, ऐसा कोई इंसान नहीं देखा कि जिसको पूर्ण गुरु पर श्रद्धा हो और ईश्वर पर निश्चय ना हो उसका, ऐसा नहीं होता कभी। तो इसीलिए ये पूरा विज्ञान जब तक आप नहीं समझते कि ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ, ये देह का निर्माण कैसे होता है, ये संसार क्या है, ये सारा विज्ञान आपको यदि क्लियर ना हो तो इन बातों का निर्णय भी आप समतावला 100 बार भी पढ़ लोगे कोई हो ही नहीं पाएगा, आप कन्फ्यूज्ड रहोगे आप। तो मेरे बारे में जो सत्य है, देखो निर्णय तो वहीं से होगा ना, जहाँ से ये सिद्धांत जो है प्रकट हो रहे हैं, इनका इन सिद्धांतों का आधार कहाँ खड़ा हुआ है, वो चीज़ जब तक आपको क्लियर नहीं होगी इन बातों का निर्णय कैसे होगा। कोई भी इंसान कभी आपने ऐसा समाज में देखा है जो ये सोचता हो कि मैं दुखी क्यों, मुझे दुखी कौन करता है? जिससे पूछो क्यों दुखी हो भाई, मकान नहीं है मेरे पास, दुखी हूँ, शादी नहीं हुई मेरी, मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे नहीं हुए, दुखी हूँ, शरीर मेरा रोगी रहता है, मैं से दुखी हूँ, मेरी इनकम कम है इसलिए दुखी हूँ, ये देश की गवर्नमेंट बड़ी ख़राब है इसके कारण दुखी हूँ। उसके दुख का कारण अदर्स हैं, दूसरे हैं। कोई इंसान अपने अंदर झांक कर नहीं देखता कि जो कोई भी इच्छा उठती है वो मेरे मन में उठती है, वो मन मेरा है, और वो इच्छा जब उठती है तो कोई ना कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए उठती है या कोई ना कोई कर्म करने के लिए उठती है। और वो इस इच्छा मैं देखता हूँ कई बार बहुत प्रबल हो जाती है, और जैसे जैसे उस इच्छा की प्रबलता बढ़ती है वैसे वैसे मेरी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसको बेचैनी कह लो या उसको दुख कह लो, आप बात एक ही है। और ये बेचैनी मेरी ख़त्म कब होती है? जब वो इच्छा मैं इस देह के द्वारा कर्म करके पूर्ण कर लेता हूँ। और ये भी सब जानते हैं कि इच्छा के अनुसार कर्म करने में और उसको पूर्ण करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी बेचैनी झेलनी पड़ती है। इसके पश्चात भी अनिश्चय की हालत बनी रहती है, वो इच्छा पूर्ण होगी भी या नहीं होगी, हो भी गई क्या वो स्थिति टिकेगी आगे चलकर है या नहीं टिकेगी। मतलब यह है कि कर्म करने में भी अनिश्चय की हालत, उसके फल प्राप्ति में भी अनिश्चय की हालत, और फल प्राप्ति के बाद वो फल टिकेगा या नहीं टिकेगा इसमें भी अनिश्चय की हालत। तो सत्पुरुष कहते हैं कि ये जो अनिश्चय की हालत है ये इस जीव के अंदर सदैव बनी रहती है, क्योंकि एक इच्छा के वशीभूत होकर यह जीव नहीं जीता, हजारों प्रकार की इच्छाएं इसके मन के अंदर पड़ी हुई हैं। आज जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, एक साल बाद आपके अंदर नई इच्छाएं आ जाएंगी। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर जो संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, उन संस्कार के कारण आपके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। और एक जो इस जन्म में हमने संस्कार बनाए हैं देख देख के, भोग भोग के, ये संस्कार भी इच्छाओं को प्रेरित करते हैं। तो संस्कारों के कारण जो मन में ट्रैक्स बने हुए हैं उसके कारण ये हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ऑटोमेटिकली समुद्र में तरंगे पैदा होती रहती हैं, बेअंत माया है तरंगों की, कभी शांत नहीं होगी। बेअंत माया है इच्छाओं की, कभी शांत नहीं होगी। तो कभी मैंने सोचा कि जो मेरे मन में इच्छा उठी थी, जिसको मैंने पुरुषार्थ करके बड़ी मुश्किल से पूर्ण किया, किसी के मन में एक ही इच्छा उठ गई, मैं डॉक्टर बनना है। अब देखा लोगों ने समाज को, उसको समाज में देखा कि डॉक्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा पैसा कमाता है, नहीं बड़ी मौज उड़ाता है, आ गई उसके अंदर मन में इच्छा। अब विचार करो कि ये इच्छा पूरी करने के लिए कितने साल लगेंगे उसको, और कितने लोगों के अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा उठती है, कितने लोगों की पूर्ण हो पाती है। कंपटीशन से ही देख लो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कितने लड़के बैठते हैं और कितने सक्सेसफुल होते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद भी कितने डॉक्टर सक्सेसफुल हैं वो भी देख लो आप समाज में। सफलता की परसेंटेज तो बहुत बहुत कम है, रोने वाले ज्यादा देखे हमने डॉक्टर, मैंने तो ज्यादातर रोने वाले देखे डॉक्टर। सफल डॉक्टर तो बहुत कम होते हैं। तो बताइए कि कितनी मुश्किल से डॉक्टर बना वो, और कितनी मुश्किल से उसने प्रैक्टिस की होगी या सर्विस की होगी, लेकिन दूसरों को देख देख के बेचारा वो तरस रहा है, मैं मुझको इसके ऐसी सफलता क्यों नहीं मिलती, लोग इसी के पास क्यों जाते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते। बेचारा अंदर से जलता भुनता रहता है ईर्ष्या द्वेष में, या फिर मजबूरी में तरसता रहता है। तो ये जो प्रैक्टिकल पोजीशन है ये, और ये हर मनुष्य की है, ये मत सोचिए कि कई बार हम कहते हैं कि कोई जो है नोबेल प्राइज विनर हो जाए उसके तो मौज आ गई, और जापान का एक नोबेल प्राइज विनर यंग एज में हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। उसने इसलिए सुसाइड कर लिया कि मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं, कोई तमन्ना ही मेरी बाकी नहीं बची, सारी तो पूरी हो गई। अब आप कल्पना कर सकते कि मन की क्या हालत होती है। तो ये इस राज को सत्पुरुष जानते हैं। इस मन के अंदर ही पांच विकार हैं और मन के अंदर ही तीन गुणों के संस्कार हैं। ये ऐसा मन लिए बैठे हैं आप जो बेचैनी का सागर है, और जो मन करके जीवन जी रहा है उसके लिए वाणी निर्णय कर रही है, दुखम सर्वम अनुस्मृत, मत बोलो कि सब कुछ दुख ही है। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, सारा संसार दुखी है। ये दुख संसार देख रहा है क्या? जो शास्त्र कह रहे हैं, जो सत्पुरुष कह रहे हैं, इस दुख को संसार देख रहा है क्या? शायद मुझे तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि पूरा संसार दुख रूप है, मुझे तो नहीं मिला कोई आदमी। और वैदिक काल से लेके आज तक जितने ऋषि हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं। नानक भी यही कह गए, नानक दुखिया कुल संसार। सहजोबाई भी यही कह गई, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। सारे सत्पुरुष एक ही निर्णय करें कि बिना ईश्वर के मनुष्य को सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम समझते हैं कि ईश्वर मिल गया तो मुझे जलेबी खाने को मिलेगी क्या, मुझे पिक्चर देखने को मिलेगी क्या। हम इंद्रियों के भोग विलास को सुख कहते हैं, वो मानसिक शांति को सुख कहते हैं। तो जिस मन के अंदर तीन गुणों की दौड़ हो, पांच विकारों की दौड़ हो, उस मन में सुख कैसे मिल सकता है, शांति कैसे मिल सकती है, कभी सोचा नहीं? इसलिए मनुष्य के जीने का जो सही तरीका है वो ईश्वर के मार्ग पर चलना है। बाकी सारे तरीके जितने भी आप संसार में जानते हो सब उल्टा मार्ग है, सब उल्टा मार्ग है 100%। तो महाराज जी ने जब ये सदाचार की परिभाषा की कि ईश्वर को छोड़कर जितनी भी मनुष्य की सोच और कर्म है वो दुराचार की बुनियाद है, ये परिभाषा समाज को सिखा सकते हो आप? ये वही परिभाषा, ये परिभाषा वही व्यक्ति सीखेगा जो ये समझता है कि पूर्ण गुरु ये खुद ईश्वर है, और जो ये कहता है और जो ये करता है सब ठीक करता है, और ये केवल मेरे कल्याण की बात करता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। तो जिस गुरु पर शिष्य को इतना भरोसा है कि मेरा गुरु है और केवल मेरे कल्याण की बात करता है, इसकी बात यदि मैंने नहीं मानी, जिंदगी मेरी नरक में चली जाएगी, प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी नरक में चली जाएगी। क्योंकि गुरु का जो निर्णय है वो फाइनल निर्णय है, वैदिक काल से लेके आज तक पूर्ण गुरु का निर्णय कोई काट नहीं सका है। इसलिए महाजी ने कहा संतविलास के बारे में, प्रेमी इन्होंने ये गीता लिखी है, और एक बात और कही, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी या कही जो इन्होंने अपने जीवन पर घटाई ना हो। तो इसका मतलब गुरु का जो जीवन है, शारीरिक जीवन, वो प्रैक्टिकल शास्त्र है, शास्त्र का प्रैक्टिकल रूप है वो। तो इसीलिए समतावलास में ऐसी बहुत सी बातें आप पढ़ोगे, जब अभी तो विचार ही नहीं करते, जब विचार करने की आदत बनेगी उस समय जब पढ़ोगे इनको, तो आप तो अचंभे में रह जाओगे कि अरे ये क्या लिख रहे हैं महाराज जी, मैंने तो कभी 20 साल में समझ ही नहीं पाया इसको, आज मेरी समझ में आ रही है, ये कह क्या रहे हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे अचंभे की बात आपको लगाएंगे, शास्त्र वही रहेगा आपके लिए। तो आपकी जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रैक्टिकल लाइफ एडवांस होती है, वैसे ही वैसे आपको शास्त्र समझ में आता है, शास्त्र वही रहता है। इसलिए विवेकानंद सारी जिंदगी अपने पास अवधूत गीता रखते थे। क्या अवधूत गीता तो उनके पास मुश्किल से, शायद विवेकानंद को तो पढ़ने में 15-20 मिनट लगते ज़्यादा, लेकिन सारी जिंदगी उसका मनन करते रहे, वो क्यों करते रहे। सत्पुरुषों की बातों में ऐसे गहरे राज होते हैं जो बिना प्रैक्टिकल लाइफ को कभी आपको समझ में आ ही नहीं सकते। थ्योरी पढ़ने वाले को वो राज कभी समझ में नहीं आ सकते, इसलिए प्रैक्टिकली चलना पड़ता है और उनको उन शास्त्रों पर गहरा मनन करना पड़ता है। ये आपका रोजाना का ही काम है। तब पता लगता है जो ईश्वर की बात सत्पुरुष करते हैं वो तो सारे संसार के विचारधारा से बिल्कुल उलट है। तो बताइए वो कितना कठिन हो गया उसको समझना और करना, आसान काम रह गया फिर ये। संसार के लोगों के संस्कार, उनके निर्णय और उनकी समझ इस लायक नहीं है कि सत्पुरुषों की इन बातों को वो केवल पढ़कर समझ सके, इसमें पूरा जीवन लगता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। औरों की तो नहीं जानता मैं, अपने जीवन के बारे में तो जानता हूँ, कम से कम 50 साल तो मुझे आध्यात्मिक स्टडी करते हुए हो गया। 66 में पहली बार गीता पढ़ी थी मैंने, तब से आज तक मेरे पढ़ने की गहराई बढ़ी है, कम नहीं हुई। पढ़ने का शौक बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, लेकिन उस शौक को मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा किताबें पढ़ने का, वो शौक क्यों बढ़ा है, क्योंकि जो राज थे जो 50 साल में उजागर हुए हैं, एक ही किताब पढ़ते पढ़ते, वही शास्त्र पढ़ते पढ़ते बार बार, उसकी गहराई जैसे बढ़ती जा रही है, उसके राज जैसे खुलते जा रहे हैं, उससे शौक पैदा होता है। शास्त्र का काम है कि आपको ईश्वर तक पहुंचा के छोड़ देना। तो हम कहाँ खड़े हैं देखने जरा, और हम कहते हैं हमको पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो ढाई अक्षर प्रेम कहते हैं शब्द ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म को जानने के बाद कोई अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है आपको, तो कब पहुंचोगे वहां, तो होता है 3 जन्म लग जाए तुमको, फिर कहते हो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं जैसा हमारा स्वभाव होता है। किसी का किताबें पढ़ने का स्वभाव है वो कहेगा पढ़ाई बहुत जरूरी है, जिसका स्वभाव नहीं है कहेगा पढ़ाई पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, करते रहो सिमरन कर लो हो जाएगा सब कुछ, भाई कहेगा तो यही, वो उसका स्वभाव ही ऐसा, हम क्या करें। इसीलिए हर मामले में हमने गुरु का निर्णय देखना होता है, गुरु क्या कह रहा है, मेरा स्वभाव क्या बोला, इसका तो कोई वैल्यू नहीं। मैं तो स्वभाव के वशीभूत हूं ना, स्वभाव तो बंधन है आपका, पूरा का पूरा स्वभाव बंधन है आपका, क्योंकि स्वभाव में भी तो निरंतर परिवर्तन होता है ना, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए तो महाजी कह रहे हैं प्रेमी समाधि के बाद भी, आत्म स्थिति के बाद भी मनुष्य का पतन हो सकता है, इसलिए उसको गुरु बनने की परमिशन नहीं। दुनिया में सारे गुरु बने फिरते हैं और गुरु कह रहा है कि समाधि के बाद भी उसका पतन हो सकता है, इसीलिए जब आत्मलीन अवस्था है, आत्मलीन उसे कहते हैं जब इसकी इंडिविजुअलिटी, इसका व्यक्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया, अब वहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं है, गुरु ह्यूमन बीइंग नहीं है, देखने में मनुष्य है, वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। नहीं तो ये बात क्यों कहता गुरु, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट उगा। गुरु की आज्ञा पालन करके तू अंदर का दरवाजा खोल, कौन सा दरवाजा, जहाँ तूने ईश्वर बंद कर रखा है, तेरे घट में जहाँ ईश्वर का निवास है। तो गुरु की आज्ञा पालन करेगा तब अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन होगा। तो गुरु बाहर कहाँ है, गुरु तो खुद ही कह रहा है मैं अंदर हूं, और गुरु ये भी कह रहा है मैं ईश्वर हूं, क्योंकि संत रविदास महाराज ने यह भी लिख दिया, गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर। तो बताइए जो शब्द ब्रह्म है, गुरु कह रहा है मैं वही लिख के दे रहा है आपको, कहने में शब्दों का फर्क हो सकता है लेकिन गुरु लिख कर दे रहा है आपको कि वास्तव में शब्द रूप गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। तो आपको ये गुरु सोचने को मजबूर कर रहा है कि गुरु है तो शब्द ब्रह्म लेकिन मुझे वो गाइड कर रहा है। तो इसलिए गुरु से जब आपका संबंध बनता है, पूर्ण गुरु से, तब आप शास्त्र को गंभीरता से लेते हो, अपनी बुद्धि का वहां समर्पण करते हो कि मैंने जो कुछ सीखा है मेरा तेरे आगे समर्पण, अब तू मुझे सिखाएगा, मैं कुछ नहीं जानता। शिष्य तो ब्लैंक होकर गुरु के पास जाता है, गुरु के आगे समर्पण करता है, अब गुरु बुद्धि से सीखता है वो, अर्थात जो निर्णय मेरे समाज में बैठे हुए थे पहले, जो मैंने रच रखे थे, अपने को बड़ा होशियार समझता था, अब वो सारी होशियारी मेरी एक तरफ, अब गुरु का ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन एक तरफ। तो यदि मैं कल्याण चाहता हूं तो मुझको इस प्रकार सोचना पड़ता है। सत्पुरुषों ने खाली कठिन है सतमार्ग ऐसा नहीं कहा है, यह भी कहा है बड़ा सरल है, यह भी तो कहा है सतपुरुष को, उसको ईश्वर को प्राप्त करना तो बड़ी सरल चीज है, इत्थो पुटना इत्थो लाना, यह भी तो कहा है, यह नहीं कहा है क्या? क्यों कहा है उन्होंने? केवल निश्चय बदलना है आपने, आप कहते निश्चय बदल जाए तो यह मार्ग बड़ा सरल है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा देख लो बात करके बताओ, फैशन करना कठिन है या सादगी सादगी कठिन है? दुनिया को कोई आदमी कहेगा फैशन करना सरल है सादगी कठिन है? करने में दोनों से कौन सा सरल है?
सिंपल
है, हजार तरह की बातें बना के झूठ को छुपाना ये कठिन है या सीधा सीधा सत्य बोल देना कठिन है? नहीं, विचार करके देखो ना, हजार तरह की मन में इच्छाएं पालना उनको पूरी करना वो कठिन है या जरूरतों पर टिके रहना सादी सादी इच्छाएं पूरी करके काम चलाना ये कठिन है? विचार करके तो देखो जरा, अपने स्वार्थ के लिए जीना इसमें कठिनाई है या दूसरे के लिए सेवा भाव से जीना इसमें कठिनाई है? जीने के तरीके में बता, सोच के बताओ जरा, ये कठिनाई किसमें है? ये अपने स्वार्थ के लिए सोचोगे हर समय जलते रहोगे, घर वालों को भी गाली दोगे, घरवाली को भी गाली दोगे, मेरे लिए ये नहीं करती, मेरे लिए वो नहीं करती, कभी क्रोधित होगे, कभी जो है रोगे, कभी कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे, और जो परिवार में भाई मेरे द्वारा जिसकी सेवा हो जाए, जो सुख मिल जाए किसी को, तुम भूखे तो रहोगे नहीं, सब चीज़ मिलेगी, रहने को मकान ही मिलेगा, पहनने को कपड़ा भी मिलेगा, खाने को रोटी भी मिलेगी, लेकिन भाव आपका ये है जैसे परिवार में होता है, तो जो परिवार में सेवा भाव से जीता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो वो सुखी रहता है या ये स्वार्थी लोग सुखी रहते हैं? ये तो सबको कब्जे में रखते हैं। अरे पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, देखूंगा मैं इसको, मतलब कि मेरे अधिकार में पत्नी रहनी चाहिए, वो मैं उसका, वो मेरी गुलाम है। ये प्रैक्टिकल सत्य है, पत्नी को हम गुलाम करके देखते हैं, वो मेरी सोसाइटी से हमको संस्कार ऐसे मिले ना, सोचने का तरीके ही उल्टे हैं हमारे। तो सारी आपकी करनी आपको सिद्ध कर देगी कि आप कठिनाई में जी रहे हो। आध्यात्मिक जीवन सरल जीवन है, स्वाभाविक जीवन है, सहज जीवन है। पांच विकारों से छुट्टी मिल जाती है, विकारों से छुट्टी मिलती है आपको भाई। तो जो जीवन आपको पांच विकार बढ़ाए, पांच डिजीज आपके अंदर पैदा कर दे, वो जीवन कठिन जीवन है, या जो जीवन पांच विकार आपके दूर कर दे वो कठिन जीवन है। ज्यादा पैसा कमाना कठिन जीवन है या कम पैसा कमाना कठिन जीवन है? तो लोगों को प्रेम की दृष्टि से देखना कठिन जीवन है या लोगों को ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से देखना कठिन जीवन है? बताइए तो मुझे, कोई एक बात तो बताइए, कठिन है, समझ ही उल्टी है हमारी, कहते रहो। मैं हम दुराचारी हैं, सीधी सी बात है, हम दुराचारी हैं, क्योंकि पांच विकार के अंदर गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, पांच विकार के अंदर खुद जी रहे हैं, कहते हैं बड़े अच्छे आदमी। तो शास्त्र की निगाह से देखो अपने आप को ना, तुम्हारी दृष्टि तो बंद है, दृष्टि तो गुरु की खुली हुई है, वो आपकी दृष्टि खोलना चाह रहा है। तो उसकी दृष्टि से यदि जियोगे तब आपको पता लग जाएगा मैं कितना पापी आदमी हूँ, कितना अच्छा समझता रहा और मैंने कितने पाप किए। जिस दिन भी आपकी यदि आध्यात्मिक दृष्टि खुली उस दिन आपको अफसोस होगा कि मैंने कितने पाप किए, अपने परिवार पर ही कितने पाप किए, कितना इनको सताया है मैंने, और बड़ा अच्छा आदमी समझता रहा मैं अपने आप को। तो आपको जैसे जैसे बढ़ोगे अध्यात्म मार्ग पर वैसे वैसे आपकी आँख खुलेगी, आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ कहाँ जो है गलतियाँ करता रहा, अभी तो पता ही नहीं लगता, दोष को भी गुण करके देखता हूँ। इसलिए एक भूल कर भी ना कहें कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है। गुरु ये कठिनाई क्यों लिख रहा है, वो इसलिए लिख रहा है कि तेरे अंदर जो व्यक्तित्व का अभाव है, कर्तापन है, ये बहुत बारीक चीज है, इसको तू अभी समझ भी नहीं पाएगा, करना तो बहुत दूर की बात रही, अभी तो तू मोटे मोटे प्रोग्राम पर चलेगा, नहीं नहीं। तो जब ये अभी तुझे जब ये मार्ग तेरा थोड़ा तय हो जाएगा, उस समय जब बारीक बातें समझ में आएंगी, तो तेरा जीवन तो पहले ही सरल हो चुका होगा। ये जो तूने बवाल फैला रखे हैं संसार में, हाथ पैर फैला रखे हैं, इसके मुकाबले में तेरा जीवन बड़ा ही सरल हो जाएगा। अब यहाँ आप रह रहे हो, क्या करना ही है? यदि किसी को बहुत बढ़िया बिस्तर पर सोने की आदत है और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाने की आदत है, यानी घूमने फिरने की आदत है, तो ऐसा बिगड़ हुआ इंसान तो यहाँ हो सकता है बेचैन हो जाए। लेकिन आप यदि उसके मुकाबले में देखो, यहाँ का जीवन तो सरल नहीं लग रहा, यहाँ जीना सरल नहीं है क्या? तो इसीलिए प्रैक्टिकली यदि अध्यात्म पर चलते हो तो ये सरल जीवन है। इसीलिए इसको देवताओं का मार्ग कहा गया, राक्षसों का मार्ग क्यों नहीं कहा? राक्षसों का जीवन कठिन होता है, हम सब जानते हैं। तो ये तो हम देवताओं के मार्ग पर चल रहे हैं भाई, ये कठिन कैसे हो सकता है? ये कठिनाई इस करके कही गई है कि हम बिगड़े हुए लोग हैं, मन हमारे बड़ा विकारी है, गहरा विकारी है, इसके संस्कार बदलना कठिन काम है। लेकिन यदि सहज रूप में आप ये पांच नियम के अनुसार चलने लगो तो संस्कार बदल जाएंगे आप। जब संस्कार बदल जाएंगे ये आपका सहज जीवन हो जाएगा, फिर आप खुद ही कहोगे हे प्रभु आपने बचा लिया, कितने कठिन मार्ग से मैं सरल मार्ग पर आ गया, वो संसार का कितना कठिन मार्ग है, फिर आप खुद ये कहोगे कि संसार का बड़ा कठिन मार्ग है, बच गया मैं। तो सोचने के तरीके में हमारी गड़बड़ है, इसलिए दिल घबराता है हमारा सतमार्ग पर चलने में। जब समझ आ जाएगी बात और कुछ इस जीवन का अभ्यास हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि इससे सरल कोई जीवन हो ही नहीं सकता। सत्पुरुषों को ना देखें हम, नहीं तो उनको देख के आप उसी प्रकार कठिनाई महसूस करोगे जैसे किसी सिक्स क्लास के बच्चे को किसी एमए क्लास की बुक सामने रख दिया है, देख ये पढ़नी है तूने, कहेगा बाप रे बाप, इतनी मोटी किताब पढ़नी है मैंने? अरे भाई क्यों दिखा रहे हो उसको? एक दिन उसके जीवन में ऐसा हो जाएगा कि इतनी मोटी किताब उसको सरल लगेगी, क्या पढ़ लूंगा, इसमें क्या बात है। तो हम जहां खड़े हैं उसको देखकर ये कठिन लगता है, लेकिन जब हम चल पड़ेंगे फिर ये जीवन कठिन नहीं है, ये अमृत मार्ग है। इसको अमृत मार्ग कहा गया है और अध्यात्म विद्या को अमृत विद्या कहा गया है। सतपुरुष क्यों कहते हैं ये अमृत विद्या यदि कठिन होता? तो बिगड़े हुए लोगों के लिए कठिन है, संभले हुए लोगों के लिए सरल है। ये अमृत मार्ग है, वास्तव में ये सारे दुख आपके हरण कर लेता है। और संसार का मार्ग, 1,00,000 जन्म भी आपको मनुष्य के मिल जाएं तब भी आपका दुख हरण नहीं हो सकता। इसलिए निर्णय यही है कि ये मार्ग सरल है क्योंकि ये अमृत मार्ग है। प्रारंभ में जब तक हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, अध्यात्म को समझती नहीं ठीक तरह से, तभी तक ये कठिन है, अन्यथा ये इससे सरल कोई मार्ग नहीं है और इससे कोई सफल जीवन नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।